ಗುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೌರತ್ವಿಷೇ. श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों में लिखा है आयु हरति वै पुंसान उद्यन अस्तंच जन्न सौ यशैते कथिता यार्ता श्लोक करता है। सूरज नियमित रूप में उदित होता है और अस्त हो जाता है और एक एक क्षण हमारी आयु को हरण करता है। हम समझते हैं कि हमारी आयु बढ़ रही है किंतु पल पल में क्षण क्षण में वो कटती जाती है। एक एक दिन और एक एक रात जाती है, हमारी आयु प्रतिदिन क्षीण होती है। किंतु जो लोग अपनी आयु में एक दिन भी एक क्षण भी इस विश्व ब्रह्मांड के रचयिता पालयिता प्रभु की उत्तम उत्तम मधुर मधुर शक्तिशाली लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, उनकी आयु को सूर्य नष्ट नहीं कर सकते, बाकी सबका करें। एक दिन भी अपनी आयु में यदि भगवान की अत्यंत प्रभाव युक्त शक्तिशाली वृक्षवती कथाओं का सेवन करे कोई तो आयु पर सूर्य कुछ भी नहीं कर सकते और बाकी सब लोगों की आयु को क्षण 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 लेते जाते हैं। जैसे एक वृक्ष में अभी नया है, उसमें 12-13 वर्ष के बाद में कुछ मंजरियां दिखी और मंजरी सारी मंजरियों में पेड़ के मंजरी में एक भी कोई फल लग गया छोटा सा गोला का, तो उसको फलवती फलवान वृक्ष कहेंगे। वो एक दिन आशा है कि उसमें चारों तरफ में फल भर जाएंगे। उसी तरह से जिसने जीवन में एक दिन भी भगवान की ये बताएं कथाएं यदि श्रवण की तो उसका जीवन सारा जीवन फलमय हो जाएगा। हमारे जैसे आपके जैसे आदमियों का ये कहना नहीं है जिन्होंने हजारों वर्षों तक लाखों वर्षों तक इसके लिए अनुसंधान किया और इसकी अनुभूति की, उन लोगों के ये सब वाक्य हैं। अब इस चीज को थोड़ी सी समझने के लिए हम बहुत निम्न से हम आरंभ कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था यहाँ प्रेम धर्म के संबंध में कुछ बतलाऊंगा, किंतु बहुत परमार्थ राज्य के एकदम पहली सीढ़ी से हम थोड़ी सी बातें आरंभ करेंगे जिसको आप लोग सहज रूप से समझ सकें। एक समय मिथिला में महाराज जनक की सभा लगी हुई थी। आप लोग जनक का नाम सुने होंगे, उनको राजर्षि कहा जाता है, उनको मुक्त पुरुष कहा जाता है। तो वो उनकी सभा में याज्ञवल्क और बहुत से ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता ऋषि लोग थे। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये संसार क्या है, इसकी अनुभूति वाले, ब्रह्म को दर्शन करने वाले, साक्षात करने वाले बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि लोग थे। और भी उसी समय में इन ऋषि की याज्ञवल्क जैसे लोग थे, उनकी पत्नियां थी मैत्रेयी और कात्यायनी जैसी और उस समय में और भी वेदों के बड़े बड़े ज्ञाता लोग, ऋषि महर्षि लोगों से उनका राज्य सभा भरा हुआ था, बड़ी बड़ी दूर तक, यहाँ तक कि व्यास जी के बेटे सुखदेव स्वामी भी उनके यहाँ आए थे शिक्षा लेने के लिए, वो गृहस्थ से, राजा जनक से थे तो गृहस्थ, बाल बच्चे, सीता जी उनकी बेटी थी, सुनैना उनकी पत्नी थी, रामचंद्र जी उनके जमाई थे, तो इसी से समझिए बड़ी दूर तक उनकी प्रतिष्ठा थी, बड़े बड़े लोग, ऋषि महर्षि लोग उनकी सभाओं में आया करते। एक दिन एक नंगा धड़ंगा, आठों अंगों से वक्र, टेढ़े मेढ़े शरीर वाला, उबड़ खाबड़ और बदरूप कुरूप, एक अष्टावक्र नाम का एक ऋषि वहां पर उपस्थित हुआ। हिमालय के सुदूर प्रांत से चलता हुआ, बड़ी मुश्किल से, उस समय में न हवाई जहाज इत्यादि, हवाई जहाज तो थे, विमान तो थे, किंतु इनके लिए उपलब्ध नहीं था, वो तो कुबेर रावण ऐसे लोगों के लिए, वो सब देवताओं के लिए वो सब थे। किसी प्रकार से चलते चलते, टेढ़े मेढ़े से चलते चलते, पहाड़ी रास्ते में बड़ी कठिनता से वहां पर उपस्थित हुए। द्वारपालों ने उनको सीधा रास्ता दे दिया, किसी ने नहीं रोका, और लोगों के लिए तो रोकने की बात थी कि इनको नहीं रोका, ये चले आए। बड़ी सुंदर सभा लगी थी, सज धज करके लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग वहां पर बैठे थे। ये कैसे, पैरों में पिवाय पड़ी थी, काले माले थे, यहाँ कुबड़ यहाँ कुबड़, पैर रखते हैं इधर तो उधर में जाते हैं, उनकी लठिया भी टेढ़ी, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र, आठ अंगों से वक्र थे। कपड़े मैले कुचैले फटे, केवल लंगोटी ही साथ थी और कुछ था नहीं, चले आए। लोगों ने इनको देखा, फिर धड़क निर्भय होकर के ये राज्यसभा में आया, इसको कोई न लज्जा है न भय है न कुछ है, तो सब लोग हंस पड़े, और यहाँ तक ही राजा जनक भी हंस दिए, देखो इसकी ढिठाई कैसा ढीठ है कि ये सभा में ये पहुंच गया। जब ये हंसने लगे तो वो भी अपनी लठिया टेक दी और उस पर अपना ये रख करके, उसने भी हो करके जोर से ठठा ठठा करके हंसने लगा। सब देख करके अवाक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, भाई हम लोग तो इसके कुरूप अवस्था को देख करके और निर्भयता को देख करके यहाँ पर, ये कैसे ये चला आया ऐसा व्यक्ति, यहीं पर कोई नंगा कुचैला, फटे पुराने कपड़े, दुर्गंध युक्त शरीर से यहाँ कोई आ जाए और इन धड़क होकर आ जाए, लोग उसके तरफ में देखते रह जाएंगे। वैसे ही वहां की स्थिति हुई। महाराज जनक उठे, बोले जी महात्मन आप किस लिए हंस रहे हैं? तो बोले महात्मन आप लोग किस लिए हंस रहे हैं? तो ये तो सीधी सी बात है कि आप इतने कुबड़े, आठ अंगों से टेढ़े, पैर में बेवाय, मैले कुचैले कपड़े, वो भी एक डोर कोपिन केवल, और इस सभा में निधड़क होकर के, निडर होकर के आप यहां तक चले आए एकदम, इसलिए आपकी ढिठाई देख करके ये लोग हंस रहे हैं, शायद मैं तो इसी तरह से देख रहा हूं, आप किस लिए हंस रहे हैं? उन्होंने कहा मैं हंस नहीं रहा, मैं रो रहा। मैंने सोचा था महाराज जनक विश्व में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, मुक्त महापुरुष है, उनके सभा में बड़े बड़े विद्वान लोग, ब्रह्मवेत्ता ऋषि लोग रहते हैं और वहां पर दिव्य ज्ञान की चर्चा होती है। मैं इस लालसा से, इस लोभ से, मैं बहुत कष्ट से नहीं चल सकता था, फिर किसी प्रकार से यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर के देखा तो मुझे हंसी आ रही है सचमुच में। क्यों आया यहाँ? आने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे महात्मा आप देखने हैं बड़े बड़े विद्वान यहाँ से भरे पड़े हैं, आपने भूल नहीं की, आप ठीक ही आए। नहीं, मैं यहाँ पर देख रहा सभी मोची चमार हैं बैठे हुए। भाजी आप ऐसी बात कहते हैं? आप सब कुछ चमार देख रहे हैं, मैं तो यही देख रहा हूँ चमारे। चमार नहीं तो हंसते नहीं।
चमार को चमड़े का ज्ञान होता है। किसी वस्तु का उत्तम गुण का उसको नहीं कुछ होता है।
एक कोई भी व्यक्ति अपने कुछ क्षणिक समय के लिए यौवन के उन्माद में अपने को सुखी समझ सकता है। एक पियक्कड़ भी अपने को शहंशाह विश्व का समझ सकता है, किंतु समझने से उसका थोड़ा सा दो मिनट के बाद में भविष्य क्या है। एक पियक्कड़ अभी रात में हम लोग जा रहे हैं तो देखा जी पियक्कड़ पी करके इधर उधर करा, एक ट्रक आई एक इतनी के लिए बच गया, उसके एक आदमी ने हाथ पकड़ करके खींच लिया जल्दी से, अन्यथा बस हो गया होता। तो यही तो आनंद है जीवन का, किसी का कोई गारंटी नहीं ये पिछले क्षण में क्या होगा, और फिर भी अपने को सुखी समझते हैं, जगत को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को धर्म ही नहीं ना पशु ही समाना पशुपात बताया गया। पशु किसको कहते हैं? जिनको भविष्य का ज्ञान नहीं है उसको पशु कहते हैं। बहुत से भैंसों को गायों को कसाई घर के सामने खड़ा कर दीजिए और बारी बारी से 50-50 एक 100 की टोली में भीतर ले जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक कोई चीज है और उसके द्वारा उनको मार रहे हैं। अब वो जाने वाले हैं, उनके सामने कुछ घास हरी हरी फेंक दी और वो परस्पर लड़ रहे हैं, बलवान दूसरों को अपने सिंगों से हटा रहा है। यही हमारी दुर्दशा है। हम अभी लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, आटम बन बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, हमारी क्या अभी गति क्या होने जा रही है, कब मरना है कुछ पता नहीं है। यही तो मूर्खता है। किंतु सुयोग है, मनुष्य जन्म एक ऐसा है जिसमें हम सुखी हो सकते हैं, हमारा जीवन सुखी हो सकता है। हम आत्मज्ञान लाभ से मैं क्या हूं इसकी रियलिटी को समझा जा सकता है। किंतु जो जानवर कसाई खाने के सामने पड़े हैं और थोड़ी सी घास के लिए लड़ झगड़ रहे हैं और उनको कोई चिंता है, वो सोचते हैं मैं सुखी हूं इसी मैं ले लूं उनको हटाकर, उनको फुर्सत नहीं है इसके लिए। हम लोग चारों तरफ से जाकर के अपने इस ज्ञान को, अपने इस चीज को जो हमने उपलब्धि की हमारे ऋषियों ने लाखों कोटि वर्षों से साधन करके देना चाहते हैं और हम लेना नहीं चाहते बिना किसी पैसे के। जगत में और पाश्चात्य देशों में थोड़ी से कुछ के लिए ये जैसे कि ईसाई भी पैसा लेता है, महीना लेता है, मौलवी भी पैसे लेते हैं अपने समाज से और दूसरों से, हम लोग कुछ नहीं लेते, अपना जीवन सब कुछ इसी पर नौछावर कर दिया है। जो ज्ञान तत्व हम उपलब्धि करेंगे हम समाज को देंगे, हमारा शरीर हमारा सब कुछ समाज को छोड़ दिया है। तुलसीदास जी समाज के लिए जिए, वाल्मीकि जी व्यास जी समाज के लिए जिए, मनुष्यों के लिए प्राणी मात्र के लिए जिए, अपना उनका अपना कुछ नहीं, किंतु फिर भी उन चीजों को लोग सुखी होने के लिए नहीं लेना चाहते हैं, बस मकार में लगे हुए हैं। मकार माने क्या? मांस मदिरा महिला या पुरुष इसको ले लीजिए, मदहोशी पड़े हुए हैं, आगे के लिए जीवन की में कुछ नहीं देखते हैं। हमारा आज राष्ट्र के जो कर्णधार बने हुए वही लोग फंसे हुए हैं, तो दूसरों की बातें उनसे हम कल्याण की कामना क्या कर सकते हैं? धर्म को धर्म निरपेक्ष बना दिया है। हम गीता भागवत स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, इंग्लैंड इत्यादि में हम बाइबल पढ़ सकते हैं, वहां के स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, मुसलमानों में कुरान इत्यादि हदीसें इत्यादि पढ़ाई जाती हैं, किंतु हम हिंदू होकर के कहीं भी अपने हिंदुस्तान में कहीं भी स्कूल कॉलेज में गीता का एक चैप्टर, भागवत का एक चैप्टर, वाल्मीकि रामायण इत्यादि नहीं पढ़ा। क्यों? मुसलमानों के स्कूल कॉलेज में है इस्लामिया और क्या क्या में, वहां पर तो होगा, किंतु हम अपने हिंदुओं के, यहां तक कि हम अपने बच्चों को भी ईसाइयों के स्कूलों में भेजेंगे। गीता का एक लाइन न जानते हैं न दूसरों को हम अपने बच्चों को सिखलाएंगे, हम कैसे सुखी और शांति हो सकते हैं? उनमें ये आत्मज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है उनके शास्त्रों में, वो तो तलवार जानते हैं, तलवार के बल पर। जितने मुसलमान यहां पर बादशाह हुए, अपने धर्म का जो तलवार के बल पर चढ़ाते हैं, उसमें क्या कुछ हो सकता है? अच्छा, जो कुछ है हमारे वेदों की कुछ छाया उनमें है, वेद हमारे नित्य है, और आज से ये कुरान भी कही अधिक से अधिक तो कितने ही जरिशन आज से 1100-1200 वर्ष पहले की, बाइबल इत्यादि भी आज से 1900-2000 वर्ष, और हमारे वेद शास्त्र उपनिषद गीता भी छोटी छोटी लीजिए आज 5000 वर्ष, वो भी 5000 वर्ष नहीं, काल की गणना से ये कब कृष्ण ने कहा जी ये तुमको जो ज्ञान बतलाते हैं आज से करोड़ों वर्ष पहले मैंने सूर्य को दिया था। ये नित्य अपौरुषीय है, इसमें अक्षय ज्ञान भंडार, उसकी छोटी सी एक लेकर के हम विश्व में जाते हैं, जिस दिन राष्ट्र में गए हैं वो लोग राष्ट्र को लेकर झुक गए उनके उपदेशों को सुन करके, किंतु हम भारत के लोग ऐसे कुछ पागलपन में आ गए हैं। हैं कुछ लोग एकदम शून्य तो नहीं है, अधिकांश लोग पाश्चात्य सिविलाइजेशन की ओर में बढ़ रहे हैं। हम अपने घर के अच्छे जो विचार हैं उसको हम लोग नहीं समझना चाहते, बिना पैसे का आत्मज्ञान देते हैं नहीं लेते। वहां की यही की बातें जब वहां से जब आती हैं, जैसे गीतांजलि आप लोगों ने यदि सुना होगा, यदि अधिक तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक कृति है जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिला था। यह गीतांजलि क्या है? गीता की सबसे जो तुच्छ जो शिक्षा है वो, असल शिक्षा को तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी नहीं समझ सके क्योंकि संस्कृत इत्यादि के विद्वान नहीं थे, हमारी भारतीय संस्कृति के नहीं थे, वो भी पाश्चात्य संस्कृति के थे, उसी का जूठन खाया था उन्होंने, भारतीय किसी चीज को ग्रहण नहीं किया। उन्होंने वेद व्यास के गीता इत्यादि का अध्ययन नहीं किया, इसलिए हम लोग सुखी हो सकते हैं। कब सुखी हो सकते हैं हम? जब ये समझें कि मैं शरीर नहीं हूं, पहला चीज। आप शरीर को ही सर्वस्व मान लिया और इसी के खाने पीने में ही इस शरीर को लगा दिया, तो होगा क्या? अंत में ये शरीर तो चला जाएगा, इसका एक केस भी नहीं ले जा सकते, एक सुई धागा भी इस जगत से नहीं ले जा सकते हैं। तो चीज जीवन के लिए आपने जीवन भर संग्रह किया, वो तो कुछ साथ में गया नहीं, तो आप सुखी कैसे हो सकते हैं? इसलिए इस शरीर रहते हुए कहा गया लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवन्। यह मनुष्य शरीर कोटि कोटि जन्मों के बाद में भाई मिला है, कैसे मिला? देत ईश बिनु हेतु स्नेही, प्रभु बड़े दयालु हैं इसलिए इस शरीर को दिया। इसी शरीर में हम कुछ सत्संग कर सकते हैं, कुछ आत्म संयम कर सकते हैं, उन शिक्षाओं का हम पालन करके आत्मज्ञान को लाभ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा चलिए फिर हम थोड़े से वैदिक उस पर चल रहे हैं। उपनिषद में लिखा जी एक समय वही मिथिला के राजा जनक जिनकी बात अभी कही, वहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग रहते थे और सब समय आत्मज्ञान की बातें होती थी। महाराज जनक भी बड़े कौतूहल ग्रस्त थे, वो कुछ ऐसे प्रश्न कर देते जिसके प्रश्न में वैसी बातें कुछ आ जाती आत्मज्ञान। एक दिन उन्होंने कहा अपने किसी एक कर्मचारी को आदेश दिया, 1,00,000 गायें सुंदर सजी हुई, उस पर मखमल के सुनहले कपड़े बिछाए हों, उसके पीठ पर सोने की झालर लगी हो, उनकी सिंगें सोने की बनी हुई हो और खूर चांदी से मढ़े हुए हूँ और दूध देने वाली 40 केजी दूध देने वाली हूँ। कहे 40 केजी दूध देने वाली गायें हैं। अरे हमें हॉलैंड में भी देखा है, वहीं पर एक आदमी की है बैठे हुए, एक दो नहीं हजारों हमने गाय देखी इनके यहाँ। 40 केजी देती है, आदमी नहीं दूहते, आदमी दूह नहीं पाए, मशीन लगा देती है और घर घर करके बैठ। तो 40 केजी वाली दूध और बछड़े उछलते हुए हंस जैसे, मखमल जैसे उनके चेहरे और कूद रहे हैं, ऐसी गायों और ऐसी बछड़ों से युक्त ऐसी सुनहली गायों और एक एक गाय पर 101 मोहर ये दान दिए जाएंगे। ये गाय लेकर के खड़ी कर दो और इसमें से जो ब्रह्मवेत्ता हो उस गाय को ले जाए। बस सचमुच में ऐसे ही बात है, पहले ही से ये प्रस्तुत थी, राज्यसभा के बाहर में वो गाय खड़ी कर दी गई और ने कहा जी आप लोगों में से, मैं नहीं जानता जी कौन ब्रह्मवेत्ता हाथ जोड़ करके बोले, ब्रह्मवेत्ताओं के चरण की धूली हमारे सिर पर रहे, इसलिए आप ही लोगों से निर्णय कर दीजिए और जो कहे जी मैं ब्रह्मवेत्ता हूं इन गायों को हाँक करके अपने आश्रम में ले जाए। अब कानाफूसी होने लगी, आप ब्रह्मवेत्ता है, आप ब्रह्मवेत्ता है, आप ब्रह्मवेत्ता है, भाई मैं तो नहीं, तो मैं तो नहीं, तो मैं तो हूं, इस प्रकार से बातें चल रही। देख रहे हैं जी कौन खड़ा हो, कौतूहल सा हो गया। थोड़ी की देर के बाद में महाराज यज्ञवल्क्य जी उठे, यज्ञवल्क्य उठे, उन्होंने कहा कि छात्र, अपने छात्र को बुलाया, छात्र इन गायों को लेकर के हमारे आश्रम में चलो, मैं पीछे से आ रहा हूं। और छात्र जो ही वहां से उठा उनके साथ में था और जाकर के गायों को हाँक करके ले जाएगा, त्यों ही लोगों ने कहा ठहर जाओ, पहले परीक्षा दें जाएगा बल्कि जी ये ब्रह्मवेत्ता है कि नहीं और तब गायों को ले जाए, हमारे प्रश्नों का पहले उत्तर दीजिए, आप ब्रह्मवेत्ता है कि नहीं। तो जिसके जो मन में आया प्रश्न करने लगे और वो क्रमशः एक एक आदमी के एक एक प्रश्नों का उत्तर देने लगे, किंतु प्रश्नों की झड़ी लगी, झड़ी सी लगने और कुछ उठपटांग सा प्रश्न होने लगा। जैसे उठपटांग सा प्रश्न कैसा, यदि भगवान मर जाए तो फिर क्या होगा, यह कोई प्रश्न ही नहीं है, ब्रह्म मरता ही नहीं है, आत्मा यदि मर जाए ये कोई प्रश्न है, प्रश्न तो है नहीं, इसलिए उठपटांग प्रश्न भी करने लगे। तो उन्होंने खड़े होकर के कहा जी देखो प्रश्न ठीक उचित होना चाहिए और यदि कोई उठपटांग प्रश्न करता है तो मैं कहता हूं अभी उसके सिर के धज्जियां उड़ जाएंगी, ऐसा समझ करके प्रश्न करो। बस सबकी बोलती बंद हो गई। यह है ब्रह्मवेत्ता, जो कह देगा वो हो जाएगा, भविष्यत का सबको वो जानता है, उसके हाथ में रखे हुए आमने की भांति विश्व ब्रह्मांड चेतन अचेतन समस्त पदार्थों को वो जानता है। ब्रह्म है कौन, ब्रह्मति इति ब्रह्म, जो सबको बढ़ाता है, सबको दिव्य ज्ञान दे करके इस जगत से अपने तरफ लेकर के उसको भी ब्रह्म के समान बना देता है, जीव का मिलन ब्रह्म से करा देता है, यह है ब्रह्म। अब तो सभी लोगों की बोलती बंद हो गई। इतने में एक लड़की उठी, लड़के का क्या नाम था, गार्गी, गर्ग ऋषि की कन्या, बहुत ही सुशिक्षित विदुषी महिला और निर्भय उठ करके खड़ी हुई। उन्होंने यज्ञवल्क्य जी को प्रणाम किया, यदि उचित हो तो हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। संसार में कृपण और सब प्रकार से दुर्भागा व्यक्ति कौन है और संसार में ब्राह्मण कौन है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता। आप इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद में आप गायों को हाँक करके ले जा सकते हैं, किंतु हमारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए, किंतु यदि योग्य हो तो उत्तर दीजिए और न योग्य हो तो आप उत्तर नहीं भी दे सकते हैं। आप ब्रह्मवेत्ता है मैं जानती हूं। ब्रह्मवेत्ता कौन है? ये शरीर मैं नहीं हूं। हम सभी जानते हैं ये शरीर को आत्मा छोड़ करके चली जाएगी, किंतु आत्मा क्या चीज है? उसका कोई रंग रूप है या नहीं? उसका कोई शक्ल है, आकार है कि नहीं? उसमें कुछ गुण है या नहीं? इस चीज के अनुभव करने वाला, उपलब्धि करने वाला व्यक्ति ब्रह्मविद है। इस शरीर से आत्मा चली गई, लोगों ने सोचा जैसे देखें कैसे चली जाती है, क्या चीज है। बड़े मोटे कांच के वैज्ञानिक लोग, अमेरिका और कहां कहां के सब लोग, उन्होंने सोचा जैसे आत्मा ये मरने के बाद में कहां निकल करके जाती है, क्या चीज है। तो उसके लिए एकदम लोहे इसका कांच का एकदम बनाया जिसमें कहीं भी लीक ना हो, और एक मरते हुए व्यक्ति को जो मरने वाला है, आसन्न मृत्यु वाला, उसको वहां पर लेटा दिया। उसको तो मरना ही था। थोड़ी देर के बाद में देखा क्या, कहीं से न जाने क्यों चटक गया कहीं से कांच, थोड़ा सा चटका, बस नहीं बता सके। ब्रह्मवेत्ता ये सब चीज जानता है, आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, उसको रियलाइज करता है। वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता है, संसार के थप्पड़े उसके ऊपर नहीं आएंगे, उसके ऊपर में जन्म मृत्यु क्लेश और ये जो शरीर का जो यह है ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलने वाला चीज है, वो नहीं उस पर कोई प्रभाव कर सकता। आग भी नहीं जला सकेगी, उसको हवा की भी जरूरत नहीं होगी। जैसे प्रहलाद महाराज जी को आग जला सकी, ब्रह्मवेत्ता थे, नहीं जला सकी। हवा की भी जरूरत नहीं। नारद जी को जहां भी रखो, जिस रूप में रखो, उनका शरीर अब बदलेगा नहीं। कृष्ण का शरीर संपूर्ण रूप से सच्चिदानंद है, चिन्मय है। उनको मारने के लिए कंस ने जावती चेष्टा की, नहीं मार सकते हैं। समय हो गया, तो असली बात तो हमने कहा ही नहीं। अभी 5 मिनट का समय दीजिए, 5 मिनट का समय। तो याज्ञवल्क्य जी गायों को हाँक करके ले गए। अब वो ब्रह्मवेत्ता हैं कि नहीं है, आप हम लोग समझ सकते हैं क्या? काने से हो जाएगा? उसको समझने के लिए कुछ चाहिए, वैसा साधन चाहिए। अब चलिए थोड़ी सी, अब वही जब घर में पहुंचे, उस समय उनकी उम्र 60-70 वर्ष की हो गई थी। उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम मैत्रेयी और दूसरे का नाम कात्यायनी था। कात्यायनी बड़ी थी और दूसरी मैत्रेयी जी छोटी थी। दोनों को दो दो लड़के थे, कन्याएं भी थी। इन्होंने उस समय तक उन लोगों के लिए रहने के लिए बहुत सुंदर आश्रम, लाखों लाखों गायें, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण के भंडार उन लोगों को रख दिए थे। उन्होंने कहा जी देखो मेरी उम्र अब 70 वर्ष की हुई या 75 वर्ष की हुई, और मैं चाहता हूं कि एकांत में जाकर के कुछ ब्रह्म चिंतन करूं। तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, तुम्हारे रहने के लिए जैसे भी झोपड़ी हमने बना दी है, लाखों लाखों गायें हैं, गोधन है, स्वर्ण का भंडार पूरा है, तुमको जो इस जीवन में चाहिए सभी कुछ हमने दे दिया है, अब तुम बच्चों के साथ में रह करके अपना जीवन निर्वाह करो, और हमें आप लोग अवकाश दें जो मैं अब निर्जन अरण्य में जाकर किसी प्रकार से भगवत चिंतन करूं। कात्यायनी बोली तो मैं आपके साथ इतने दिनों तक रही, मैंने आपकी कुछ सेवा की, सेवा में त्रुटि हो गई, आप क्षमा करेंगे और आप जाइए, आप भगवत चिंतन करें। अब रह गई मैत्रेयी। मैत्रेयी की तरफ उन्होंने इशारा किया जैसे आप हमें आप भी आदेश दीजिए, अब मैं जाऊं चतुर्थ आश्रम में रह करके मैं कुछ भगवत चिंतन करूं। उन्होंने कहा जी आप खुशी से जा सकते हैं, किंतु हमारा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर देकर के आप जाएंगे हमें संतुष्ट करके। तो ठीक है, तुम्हारा प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, आपने हमें पुत्र दिया, कन्या दी रहने के लिए, बहुत अच्छा राजभवन हमें दिया है, सोने के आभूषणों से हमें लाभ दिया है, घर में सोने बहुत पड़े हैं। जीवन में जिन जिन चीज की जरूरत होती है इस शरीर के लिए, इस मन के लिए आपने सब कुछ दिया है। ये बतलाइए कि ये जो चीजें आपने हमें दी, इसी समय में जीवन में सुखी रह सकती हूं क्या? जो चीजों को आपने दिया, सुनकर के गदगद हो गए। उन्होंने अपने अखबार में, अपने बाहों में उनको भर लिया। बोले, सचमुच में तुम हमारी अर्धांगिनी हो, सचमुच में आज मैं कृतार्थ हो गया तुम्हारी जैसी पत्नी को पा करके। आप जैसी पत्नी को अब छोड़ करके वन जंगल में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिनके लिए छोड़ने के लिए जा रहा था, तो आप तो वैसे ही हैं, किस लिए छोड़ा जाए? आप भी तो देखते हैं कि ब्रह्मज्ञानी जैसी ही हैं। देखो, मैंने जो कुछ आपको दिया है, अभी जो देने की बात कह रहा हूं, जो दे रहा हूं, ये सब बाहरी चीजें हैं। इससे मनुष्य कोई भी सुखी नहीं रह सकता। आज तक जब से सृष्टि हुई है, आज तक न रहा और न रहेगा भविष्य में, कोई भी सुखी नहीं और शांति से नहीं रह सकता। किंतु हमने आपको जो एक अभ्यंतरीन चीज दिया है, भीतरी चीज दिया है, आत्मज्ञान की तरफ में जो दिया है, भगवत भक्ति दिया है, इसी से आप जीवन में सुखी और शांति से रह सकती हैं और किसी भी उपाय से नहीं रह सकती। तात्पर्य क्या है? अरे उस समय देखिए, वो कितने लोग सुखी थे और उस जीवन से वो पूछ रही हैं, जो आप अब तक जो संसार में थे और हमको आप संसार में रहने के लिए कह रहे हैं, या आप रहिए, तो आप इसको यदि सुख में ही समझते हैं, जो जिन चीजों को दिया और हमको दे करके, तो आप उन्हीं चीजों को लेकर के आप रह करके सुख क्यों नहीं भोग करते? जो आप जा रहे हैं, बाहर में जाने की क्या आवश्यकता आपको? यदि सचमुच में वही चीजें सुख देती तो उनके पास तो सब कुछ था, तो उसे सुखी नहीं रह सके, तो वो जा रहे हैं, कोई अलग चीज है, वो है भगवत उपासना, प्रेम की प्राप्ति। कौन सा प्रेम? जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इससे पहले अभी इंग्लिश अंग्रेजी की तख्त पर कौन है, विक्टोरिया या क्या नाम है अभी, एलिजाबेथ है। अच्छा, इनके पहले या इन्हीं के पहले कौन, एक एडवर्ड सिक्स या कौन थे, जो कि राजकुमार थे, जो कि सारे विश्व में अंग्रेजी सल्तनत का वही राजा होने वाले थे, और किसी एक लड़की से प्रेम हो गया, किंतु लॉर्ड फैमिली की नहीं थी, सिम्पसन की लड़की थी। अच्छा, और उनसे उन्होंने उनको प्यार कर लिया, उसको लॉर्ड सभा ने कहा आप उसे शादी कर सकते हैं किंतु राजा नहीं बन सकते, और यदि राजा बनना चाहते हैं तो उसको छोड़ करके लॉर्ड फैमिली की किसी कन्या से आप शादी कर लीजिए। क्या है भाई, आंख बार बार दिखला रहा है, क्या कह रहा था? राज्य लीजिए, छोड़ो। उन्होंने क्या किया? राज छोड़ दिया। किस लिए? प्रेम के लिए। यद्यपि वो प्रेम नहीं, मोह है ना? शरीर से शरीर का, जो अभी डायना की जो दशा हुई, उस प्रेम में, मोह में उनके पति ने उनको उपेक्षा की, तो एक मुसलमान के साथ में अब शादी कर करके अब कुछ नशा उतारना चाहती थी, और उनकी क्या दुर्गति हुई आप लोग जानते हैं। ये प्रेम का, मोह का, प्रेम नहीं, ये मोह है, इसका यही नतीजा होता है। तो यदि एक नकली छाया प्रेम के लिए, उसको छाया प्रेम कह सकते हैं, उसके लिए वो उन्होंने इतने बड़े भारी संतलंत को, राज्य को छोड़ दिया, वो क्या प्रेम है? उसी प्रेम को देने के लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु जी आए, कृष्ण स्वयं आए। ये कृष्ण की प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं और राधा जी प्रेम की पुतली हैं। ये दो नहीं है, एक ही हैं। कृष्ण ही अपने पैंग से राधा जी बने हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं, ये प्रेम। और ये दिख रहा है, ये प्रेम कैसा होता है, प्रेम लेना नहीं जानता। प्रेम क्या चाहता है? सर्वस्व दे देना। शारीरिक उनका शरीर हमारे जैसा पिंड नहीं था, उनका सच्चिदानंदमय नित्य शरीर, नित्य शरीर से ही प्रेम हो सकता है। इस शरीर से प्रेम कदापि नहीं होगा, उस प्रेम को यह शरीर सह भी नहीं सकता। इस चीज को समझे, इसलिए साधन करते 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 साधन की अवस्था में ही ये शरीर चला जाएगा, यहाँ तक कि मन का शरीर भी चला जाएगा, और भाव अवस्था में उसका शुद्ध आत्मा का शरीर जो इसके अंदर में परम दिव्य सुंदर शरीर है, उसका रूप है, किंतु चिन्मय रूप है, जिसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। वो साधन के द्वारा जब होगा, उसके द्वारा कृष्ण के प्रति जब प्रेम होगा, उस प्रेम से यदि एक छींटा भी एक उसके अंदर में हो जाएगा, सारे विश्व ब्रह्मांड को उद्धार कर सकता है। यह है प्रेम। उस प्रेम के पाने के लिए मनुष्य शरीर ही एकमात्र संभव है, दूसरे शरीर में संभव नहीं है। इस प्रेम को पाने के लिए पहली सीढ़ी है भगवान का नाम करें। वो भी नाम करें कैसे, यदि शुद्ध ही इस प्रकार का तात्विक गुरु, तत्वदर्शी गुरु यदि मिले। गीता में पहले ही अर्जुन को कृष्ण ने कहा, क्या बतलाया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। जो तत्वदर्शी, दर्शी माने उपलब्धि करने वाला हो, जो उसने तत्व वस्तु को कृष्ण की आंखों से दर्शन किया, उसको कहते हैं तत्वदर्शी। भगवत तत्व को जिसने दर्शन किया है, कैसे, इन आंखों से नहीं, आत्मा की आंखों से। आत्मा की आंखें क्या हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदये पिबलोकयन्ति जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमः। प्रेम के बिना नहीं होगा। प्रेम का साधन का पहला नाम है श्रद्धा। अब आगे बढ़ेंगे, श्रद्धा होने के बाद में गुरुकरण इत्यादि होने के पश्चात में वही श्रद्धा धीरे धीरे साधन करते करते अनर्थ दूर हो जाएगा। जब मैं शरीर नहीं हूँ, इसके अंदर में जितनी बुराइयां हैं ये सब दूर हो जाएगा, तो इसका नाम, श्रद्धा का नाम निष्ठा हो जाएगा। निष्ठा और परिपक्व होने पर रुचि कहलाएगी। तो फिर नाम लेने में, चिंतन करने में ये ध्रुवा निस्मृति हो जाएगी, तैल धारावत अविच्छिन्न गति से उसका साधन होने लगेगा। इसके बाद में आसक्ति होगी, तब भगवान की कृपा ऊपर से उतरेगी हृदय में, उसका शरीर चिन्मय हो जाएगा, ये शरीर को छोड़ देगा, और चिन्मय शरीर के द्वारा भगवत दर्शन होगा। इसको कहते हैं तत्वदर्शी। ऐसे महात्माओं के पास में जाओ, जो दिखने में तो शरीर उनका ऐसा ही हमारी जैसा है, किंतु हमारा जैसा कृष्ण का शरीर नहीं है, अर्जुन और भीम का शरीर वैसा नहीं, गोपियों का शरीर वैसा नहीं है, प्रहलाद महाराज जी का, नारद का, सुखदेव गोस्वामी का शरीर चिन्मय दिव्य है, किंतु एक ही जैसा दिखता है। नकली सोना कॉपर, उसको ऊपर से कुछ लगा दो, पॉलिश कर दो, तो वो सोना जैसा दिखता है, किंतु सोना, सोना से अधिक ग्लिटरिंग होता है, किंतु सोना वो नहीं है। ऐसे ही महात्माओं का, भगवान का शरीर ऐसे दिखने पर भी ऐसा नहीं है, वो तो दिखला देते हैं कृपा करके, नहीं तो शरीर को देखा भी नहीं जा सकता। इसलिए जब श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति, इसके बाद में भाव प्रेमावस्था होगा, तब तत्वदर्शी। ऐसे महात्माओं के पास में जाकर के परिप्रश्न करो, किंतु ऐसे परिप्रश्न करने से उत्तर नहीं देंगे, शरीर को उनके प्रति समर्पित कर दो, आपकी सेवा के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। यदि हमारा प्रश्न उचित हो तो इसका उत्तर दिया जाए, कुछ कृपा किया जाए। जैसे अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पण कर दिया, तब कृष्ण ने उनको बतलाया, ऐसे ही जगत के थपेड़ों से जब आदमी घबरा जाएंगे, जबकि कोई भी हम कुछ नहीं कर सकेंगे, असहाय हो जाएंगे, बिल बिलाने लगेंगे, तब इसकी जब आवश्यकता समझेंगे, तो ऐसे मुक्त महापुरुषों के निकट जाकर, वो भी सहज ही नहीं होगा, वो भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, बिना भगवान की कृपा से संत नहीं मिलते। ऐसे संतों के नियत जाकर के यदि प्रश्न करेंगे, तब फिर धीरे धीरे भक्ति हो करके, तब फिर प्रेम होगा, तब फिर इन चीजों को समझ सकते हैं। आज यहीं तक रहे, मैंने बहुत अधिक बोल दिया जो जितना नहीं बोला। यदि कोई रूढ़ बात निकल गई है तो आप लोग अपनी उदारता के साथ में हमको क्षमा कर देंगे, और यदि अच्छी बात इसमें कुछ हो तो आप लोग ग्रहण करें। आज से ही भगवान का भजन आरम्भ कर दें, कल से नहीं, कल को किसी ने नहीं देखा।